नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के विभिन्न मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर उनकी संपूर्ण रचनाओं का संग्रह किया जारी। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले देश भर में शुरू। प्रधानमंत्री आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभागी इनोवेटर्स से करेंगे बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 45वें पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही आज दिन भर के लिए और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही जब दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेसी नेताओं के अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ कथित संबंधों के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष पर सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर जनता का ध्यान इस मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया। उपसभापति हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपने सीटों पर वापस जाने और सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने का आग्रह किया। इसके बाद उपसभापति ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले जब आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर दिए गए स्थगन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के लिए विपक्ष की निंदा की। सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में बिना किसी व्यवधान के प्रश्नकाल शुरू हुआ। कार्यवाही पूरी होने के बाद सदन में शून्यकाल शुरू हुआ जिसमें कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश में अशांति के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सभापति ने सदन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हुए। बाद में सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बाहर आज पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना सरकार की जिम्मेदारी और हम इसके पक्ष में हैं। सदन में हंगामे पर भाजपा सांसद और पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि व्यवधान का मुख्य कारण है इंडिया गठबंधन का कांग्रेस से विश्वास उठ चुका है और इसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यदि सदन में आम सहमति हो तो सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बारे में कानून बनाने के लिए तैयार है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लीगल प्रारूप के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में व्यापक इंडिया AI मिशन शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में तमिल कवि और स्वाधीनता सेनानी सुब्रमण्यम भारती के संपूर्ण कार्य के संग्रह का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुब्रमण्यम भारती को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश आज महान कवि की जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती के कार्य के संग्रह का विमोचन करते हुए उन्हें सम्मान का अनुभव हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्ध भारत और प्रत्येक व्यक्ति के सशक्तिकरण के लिए सुब्रमण्यम भारती का विजन पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन देश की संस्कृति और साहित्य के लिए भारत के स्वाधीनता संघर्ष की स्मृतियों के लिए और तमिलनाडु के गौरव के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2024 के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले आज देश भर के 51 केंद्रों में शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इसका वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के ग्रैंड फिनाले के युवा नव प्रवर्तकों से बातचीत करेंगे। देश भर के 51 केंद्रों में हो रहे ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक विद्यार्थी टीमें भाग ले रही हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने आशा प्रकट की कि युवा नव प्रवर्तकों से बातचीत करना प्रसन्नता भरा अनुभव होगा जो यकीनन आने वाले समय में भारत की विकास गाथा को प्रोत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा इन वर्षों में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन युवाओं के लिए प्रोत्साहन का गतिशील मंच बनकर उभरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस वर्ष जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों को दर्शाते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल 45 व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। समारोह के दौरान पंचायती राज मंत्री पुरस्कार विजेता पंचायतों की नवाचारी और प्रभावी कार्यप्रणालियों पर एक पुस्तिका का अनावरण करेंगे। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य अन्य पंचायतों को श्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करना और ग्रामीण भारत के समग्र विकास में योगदान देना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज वैश्विक शांति बहाल करने के लिए दुनिया भर की सरकारों और उद्योगों के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 10 की प्राथमिकताएं विषय पर वैश्विक आर्थिक नीति मंच में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने यह बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि मुद्रास्फीति दुनिया भर में प्रमुख चुनौती है और इसका प्राथमिक कारण आपूर्ति में व्यवधान है। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सब उद्योगों, सरकारों, नीति निर्माताओं, नागरिकों और नागरिक मंचों को मिलकर काम करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गीता महोत्सव के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उम्मीद जताई कि भगवद गीता सभी को कर्मयोग का मार्ग दिखाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक व्यक्तित्व, उत्कृष्ट राजनेता और अद्भुत प्रशासक बताया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास में प्रणब मुखर्जी का योगदान उल्लेखनीय है। श्री मोदी ने कहा कि श्री प्रणब मुखर्जी के पास सभी क्षेत्रों में आम सहमति बनाने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को साकार करने के प्रयास जारी रहेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि प्रणव दा ने राष्ट्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यदि सदन में आम सहमति हो तो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को शासित करने के लिए कानून बनाने के लिए तैयार है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कानूनी रूपरेखा के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर विश्वास करती है और इसने गरीब से गरीब लोगों के हाथों में प्रौद्योगिकी दी है। उन्होंने कहा कि देश में व्यापक इंडिया AI मिशन शुरू किया गया है। इसके 7 स्तंभ में AI कम्प्यूट सुविधा बनाना, कौशल रूपरेखा, स्टार्टअप्स, वित्त पोषण, नवाचार केंद्र बनाना, डाटा सेट प्लेटफॉर्म और नए एप्लीकेशन बनाना शामिल है। श्री वैष्णव ने बताया कि AI फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म में 8,60,000 लोगों ने नामांकन कराया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण देने के लिए यह प्लेटफॉर्म उद्योग जगत के साथ सहयोग से बनाया गया है। देश में डिजाइन और विकसित की गई पहली तेज रफ्तार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के मॉडल का संचालन परीक्षण चल रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के 10 मॉडलों का उत्पादन हो रहा है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री संचालन परीक्षणों के बाद 50 वंदे भारत स्लीपर रेक्स का उत्पादन शुरू करेगी। इसके अलावा प्रौद्योगिकी साझेदार कंपनियां भी 200 वंदे भारत स्लीपर रेक्स का उत्पादन करेंगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए तैयार की गई है। केंद्र ने आज बताया कि IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 1,500 पाठ्यक्रमों में 49,00,000 से अधिक लोक सेवक शामिल हैं। लोकसभा में लिखित उत्तर में कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 2,70,00,000 से अधिक नामांकन है और 1,90,00,000 से अधिक कोर्स पूरे किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके लिए लगभग 511 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। श्री सिंह ने कहा कि मिशन कर्मयोगी योजना भारत में लोक सेवकों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने का प्रयास है। इस मिशन का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिकोण और ज्ञान का विस्तार करना है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से कल पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले वर्ष महाकुंभ को प्रोत्साहन देने पर चर्चा हुई। भारत और नेपाल के बीच पर्यटन सर्किट को लागू करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए B2B संपर्क स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री अरुण कुमार चौधरी ने सत्र का उद्घाटन किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।